प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग चार, लेक्चर नंबर 262। ॐ नमः सिद्धेश्वर, ॐ नमः सिद्धेश्वर, ॐ नमः सिद्धेश्वर, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, सुर असुर नरपति वन्दने प्रविनष्ट गाति कर्मणे प्रणमन करूहु धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने वरिशेष तीर्थंकर अने सौ सिद्ध शुद्ध सीत्वने मुनि ज्ञान द्रुग चारित्र तप वीर्य चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने बंधुवणि कुमनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौ चिद्धने यह नमस्करण करिये रिते गणधराने अध्यापकोने सर्वसाहु समूहने सुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूहु साम्यनि जेनाथि शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये चौथी पुस्तक है। उसके पृष्ठ संख्या 24 पर हम आ गए, 24। यहाँ जो श्रोता पूछते प्रश्न, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि द्रव्य गुण तो पहला पण हता, पछी पर्याय केम नवी थई? ये प्रश्न है। समाधान, पर्याय उत्पन्न थाय छे। पर्याय जे छे कई अनादिनी नथी, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव है परिणमन, तो किसी न किसी अवस्था रूप से स्वयं परिणमता है, तो कहते वो पर्याय उत्पन्न थाय छे। वो अनादि से वही पर्याय नहीं, पर्याय हमेशा है, पण हर समय की नई नई पर्याय होती। गुण अनादिनो छे, गुणनो आश्रय द्रव्य छे ए अनादिनो छे, पर्याय तो नवी थाय छे। भूत भविष्याम भले अनादि थाय, पण समय समय नवी थाय छे। ए पर्याय थवामां कारण कोण छे? एके विकार पर्याय थवामां पण द्रव्य ने गुण कारण छे, एम अहीं तो कहे छे। यहां का विषय चल रहा है, द्रव्य ही उसका कारण है, द्रव्य स्वयं उस रूप परिणमित हो रहा है। विशाल आए हुए, वो नया वो स्वाध्याय में आए होंगे शायद, शायद वो विशाल आए होगा अमेरिका का। विकार पर्याय थमामा पण द्रव्य ने गुण कारण छे, एम अहीं तो कहे छे। हा हा, कर्म कारण नहीं, आत्मामा विकारी अवस्था थाय तेनु कारण कर्म नहीं। देखो, कर्म हो गए नियम रूप से सॉरी निमित्त रूप से, परंतु कर्म उसका कारण नहीं है, वो द्रव्य का ही परिणाम है, द्रव्य से हो रहा है। द्रव्य गुण नो आश्रय न लीधो छता ए विकार द्रव्य ने गुण ने आश्रय थयेली प्रकार पर्याय छे। क्या कहना चाहते, विकार जब हो रहा है तब द्रव्य का आश्रय नहीं लिया है उसने, पर का आश्रय लिया है, परंतु फिर भी वो उत्पन्न तो द्रव्य से हुई है, ये कह रहे। द्रव्य का आश्रय लेने से स्वभाव पर्याय उत्पन्न होगी, ये विकारी पर्याय जो उत्पन्न हुई है द्रव्य से हुई है, परंतु पर का आश्रय लेते समय। फिर से ये वाक्य पढ़ दे, देखो यहाँ का विषय क्या है कि विकारी पर्याय भी उसका कारण कौन है, द्रव्य और गुण। तो कहते कर्म कारण नहीं, क्योंकि कर्म तो पर द्रव्य है, वो उसका कारण नहीं है, क्योंकि किसी भी द्रव्य के पर्याय का कारण पर द्रव्य नहीं हो सकता। ये बात, ये तो सिद्धांत है। आत्मा में विकारी अवस्था थाय तेनु कारण कर्म नहीं, ये तो ऐसे समझते ना, वो तो कर्म रुलाता है, कर्म हंसाता है, तो कर्म जैसा नचाता है वैसा नाच रहा है, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं, जीव स्वयं उस रूप परिणमित हो रहा है। द्रव्य गुण नो आश्रय न लीधो, किसने, पर्याय ने, छता ए विकार द्रव्य ने गुण ने आश्रय थयेली पर्याय छे, यानी द्रव्य और गुण उस रूप परिणमित हुआ है। पंचासिकाय संग्रह में, यानी पंचासिकाय नाम का जो ग्रंथ है कुनकुंदाचार्य का, आश्रय की दो छे, हाँ आश्रय ही लिखा है, परंतु उसने उसने आश्रय नहीं लिया, सन्मुखता नहीं की है, फिर भी द्रव्य के आश्रय से हुआ है। द्रव्य के आश्रय, द्रव्य उस रूप परिणमित हुआ है। इस कौन से अर्थ में कहाँ शब्द आते हैं वही कह रहे अभी, पंचासिकाय संग्रह में आश्रय की दो, मिला क्या आपको, हाँ आश्रय की दो छे, विकार नो आश्रय ए छे, द्रव्य गुण आश्रय छे, आश्रय छे ने वो उस रूप परिणमित हुआ है, द्रव्य उस रूप परिणमित हुआ है, इतना लेना है। लो ठीक, आश्रय नो अर्थ के तेना तेमा तेना थी थाय छे, बस एटलू है ना, द्रव्य में से हुई है, परद्रव्य में से नहीं हुई है, बस इतना ही लेना है। वो द्रव्य ने द्रव्य के सन्मुख होकर हुए ऐसा उसका अर्थ नहीं है, हाँ। क्योंकि आश्रय भी अलग अर्थ में आता है यहाँ पर। एनाथी थाय छे पर थी नहीं, इतना ही कहना है। विकारी पर्याय भी द्रव्य से होती है, गुण से होती है, परद पदार्थ से नहीं होती, इतना ही यहाँ लेना है। ए द्रव्य ने गुण पोते अवस्था में विकारपणे परिणमे छे, वो स्वयं उस रूप परिणमता है, दूसरा कोई जबरदस्ती से उसको परिणमाता नहीं है, तेथी ते विकार नो आश्रय द्रव्य ने गुण छे। आवी वातु कोने सांभळवी अने क्या सांभळवी, पेलू तो सहेलू सठ हतुं, सहेलू सठ ने सोपो हतो, आसान था, क्या था तस्सुत्तर, वो तो पूरा पहले छोड़ दिया हूं ना, नमो अरिहंताणम तिक्खुत्तो आयाणम पयाणम इच्छामि परिक्कम इरिया वैयाये तस्स उत्तरीकरण लोगस्य नमोत्थुनम, वो तो प्राकृत पूरे पाठ बोल जाते हैं, आवा पाठ बोलिया एटले थई गई सामायिक, वो सामायिक का पाठ बोला इसलिए सामायिक हो गई, ऐसा कहते। धूड़मा पण सामायिक नथी सांभळने, ए पाठ बोलू छु ए हूँ ज बोलू छु, ए मान्यता मिथ्या दृष्टि छे। जब तक मिथ्या तो कायम है तो काहे की सामायिक कहते हैं, और सामायिक जो समता भाव की प्राप्ति होना वो खरेखर सामायिक है। अब ऐसे सामायिक व्रत भी होते हैं पंचमुन स्थान वाले के, और मुनियों को सामायिक तप होता है जो अंतरंग में स्थिरता है अधिक, तो सामायिक वो पंचमुन स्थान में वो शुभ भाव रूप सामायिक है, और मुनियों को वो तप रूप है, अंतरंग स्थिरता रूप सामायिक है। पांचवे वाले को भी कभी कभी वो अंतरंग में स्थिरता हो जाती है, परंतु मुनियों की अवस्था कैसे हर अंतर्मुहूर्त में शुद्ध उपयोग होता है। तो यहाँ तो केवल पाठ बोला, अभी मिथ्यात्व कायम है, और उसने मान लिया मैंने सामायिक कर लिया, अने अंदर पाठ बोलवानो विकल्प उठ्यो छे, ए विकल्प उठ्यो छे राग छे, अने मैं सामायिक करूं ऐसा जो भाव उत्पन्न हुआ वो तो राग है, शुभ राग है, करने का शुभारंभ, जैसे मैं ध्यान में बैठू अभी, मैंने मुझे ध्यान करना है, ये ऐसा विकल्प आया, वो क्या है? राग है, शुभ राग है। ऐसी वृत्ति उठी ना, वो चारित्र गुण की विभाव पर्याय है, शुभ भाव है, वो शुद्धोपयोग नहीं है। ध्यान में वो भी सविकल्प ध्यान छोड़कर निर्विकल्प हो जाएगा, तब उसका वो आत्मा का ध्यान होगा, वो आत्मा का अनुभव होगा, वो शुद्धोपयोग होगा। तब तक वो विकल्प वाला ध्यान है, सविकल्प ध्यान है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, सविकल्प है तब तक राग है वो, ए राग तारा द्रव्य गुण ने कारण उत्पन्न थयेलो छे। यहाँ का विषय ये चल रहा है, विकार हो या अविकार निर्विकारी पर्याय हो, द्रव्य उस रूप परिणमित हुआ है, वो द्रव्य के कारण हुआ है, गुण के कारण हुआ है। ये कहीं परने कारणे कर्मने कारणे उत्पन्न थयो नथी, ये यहाँ नक्की कराना है। पर द्रव्य गुण का ही समूह है, द्रव्य की पर्याय कहो या गुण की कहो, एक ही बात है ना। अलग अलग गुणों की लेंगे तो ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, चारित्र की पर्याय, सुख की पर्याय, हर एक पर्याय है। द्रव्य परिणमित हुआ कहो या गुण परिणमित हुआ, एक ही बात है। अलग अलग गुण की बात करेंगे तो है तो द्रव्य में के ही सारे गुण, द्रव्य उस रूप परिणमित हुआ है, वो द्रव्य की परिणमन शक्ति है।
हमने द्रव्य की पर्याय देखी थी, नाम याद है? बोलो।
द्रव्य पर्याय हमने देखी थी, वो अलग थी।
द्रव्य पर्याय की दो बात, दो नाम देखे थे हमने।
कौन से? नहीं,
इसलिए आपके प्रश्न खड़े हो रहे। देखो मैं बता दूं, घबराना मत, ये तो भले भले की मिस्टेक हो सकती है। द्रव्य पर्याय दो प्रकार के, एक समान जाति द्रव्य पर्याय, एक असमान जाति द्रव्य पर्याय। गुण पर्याय में भी दो भेद देखे थे, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। इनके प्रत्येक के दो दो भेद देखे थे, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। इस तरह से हमने ये भेद देखे थे। ये सारे द्रव्य और गुण मिलकर, पर्याय और गुण मिलकर द्रव्य होता है। यहाँ वही बात बता रहे हैं, जो पर्याय होती है या तो द्रव्य में से होती है या गुण में से होती है, कहीं बाहर से नहीं होती। ये बात विशेष रूप से समझाना चाहते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कहते हैं कि पर्याय पर्याय से उत्पन्न होती है, ना द्रव्य से होती है ना गुण से होती है। जहां जिस अपेक्षा से कहा जाए वो आपको समझना है। जैसे हम आपसे पूछते हैं
नहीं थे।
कि हाँ। आप
इसमें थी, यानी ये समान जाति असमान जाति सब मालूम है।
नीचे से दूसरा पैराग्राफ,
हाँ नीचे से दूसरा पैराग्राफ देखो। यहाँ क्या कहते हैं, द्रव्य की जो पर्याय हो रही, गुणों की पर्याय हो रही, वो द्रव्य से गुणों से हो रही है, पर द्रव्य से नहीं हो रही, बस इतनी बात यहाँ लेना है। अहीं तो 2.5 रुपया मण तो 4 पैसा शेर एक कूची छे, कूचे ने चाबी, एक फॉर्मूला बताया। ये कैसा डिराइव किया मालूम है? एक मण में कितने शेर होते? 4 शेर। और 2.5 रुपये में कितने पैसे होते? आने कितने होते? आने कितने होते? 2.5 रुपये में आने कितने होते? अरे 30 कैसे, 16 दुनी 32 और 8 40, तो 40 आने के 40 शेर, तो एक आने का एक शेर, ये 4 पैसे का एक शेर बताया। आप कहेंगे ऐसा कैसा कहते, क्या हमको कुछ नहीं समझ में आता? क्या लिखा है यहाँ पर, 2.5 रुपया मण, यानी 40 40, वहाँ तो 4 पैसे का आना था, तो 40 आने का 40 शेर था, तो एक आने का एक शेर, एक आने ने 4 पैसा। हाँ, वो फिर ये नया पैसा आया तब 6 पैसे का आना हुआ। अभी तो आने में कोई बोलता ही नहीं है। हाँ, 25 इन्हें गमे थे लगाओ, यानी एक फॉर्मूला है ना इतने में, जैसे हम कहते डजन का हिसाब है तो हम उस हिसाब से करते हैं। अभी यहाँ तो पैसे में बताया, 35 शेर ना 35 आना। अभी हमने 40 शेर के 40 आने, तो अभी लगा लो कहीं पर भी 7.5 शेर ना 7.5 आना है ना, क्योंकि 40 आने के 40 शेर देखे थे हमने, तो एक शेर का एक आना, 35 शेर के 35 आने, इस तरह से 7.5 शेर ना 7.5 आना, एम आ बधा तो सिद्धांत छे। यहाँ पर भी जो सिद्धांत है वो ऐसे ही लागू, एक बार वो बेसिक क्लियर हुआ हमारा तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। आ दाखला तो एना दृष्टांतो छे, लाखों दृष्टांतो थाय। पर्यायो, अभी पर्यायो क्या है कि जो आयत विशेषो स्वरूप छे, आयत सामान्य कहने से पूरा द्रव्य हो गया, आयत विशेषण अभी हम काल की अपेक्षा भेद पाड़े तो उसको हम पर्याय कहेंगे। तो आयत विशेषो स्वरूप छे ते वो जेमना लक्षण ऊपर कहेवामां आव्या छे एवा द्रव्यों थी तेमज गुणों थी रचायेल हुआथी। पहले द्रव्यों से कौन सी पर्याय होती है, गुणों से, वो बता दी। तो ये तो द्रव्यों से और गुणों से ये पर्याय बनती है। द्रव्य ने गुण थी पर्याय रचाय छे, परद्रव्य ने ते पर्याय थाय छे एम नथी। यानी द्रव्य से ही होती है, अन्य द्रव्य से बिल्कुल नहीं होती, ये दोनों को सिद्ध करें तो अनेकांत होगा। इससे भी होती है, उससे भी कथन, ये वाला अनेकांत नहीं है। विकारी पर्याय थाय के संकित पर्याय थाय, यानी विकारी हो या निर्विकारी हो, ए दर्शन मोनो क्षोभम थयो माटे संकित पर्याय थाय छे एम नथी। ये समझ में आती है बस। अरे मिथ्यात्व का उदय हो था तब मिथ्यात्व था, अब मिथ्यात्व का उदय मिट गया है, उसका उपशम क्षोभम जो कुछ हुआ है इसलिए संकित हुआ कि नहीं हुआ, तो कहते नहीं। उसकी पर्याय कर्म की पर्याय कर्म में कर्म के कारण, वो उसके द्रव्य गुण के कारण हुआ है, और जीव की पर्याय जीव में जीव की अपनी अवस्था जीव के कारण। निमित्त निमित्त है, पर हम यहाँ निमित्त नहीं, वो तो कथन पूर्ता है, उसने जीव में कुछ नहीं किया है, निमित्त ही उसको कहते हैं, वो निमित्त ही उसको कहते हैं जो परद्रव्य में कुछ नहीं करता उसको निमित्त कहते। फिर भी हम निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना, यानी वो हमारी दृष्टि उधर पड़ी है, ये तो है ना, ये तो है ना। पहले पहले नक्की करो जीव के कारण अपने से हुई है, बस बस इतना। हाँ, सामने तब कर्मों की ऐसी अवस्था पाई जाएगी, वो ज्ञान का गेय है वहां पर, जानने का निषेध नहीं है, पर मानते क्या है, वो निमित्त से ही कार्य हो रहा है, ऐसे निमित्ताधीन दृष्टि अनादि से पड़ी है। क्यों नहीं हो रहा है, अरे हमारा कर्म इतना तीव्र कर्म पड़ा है वहां पर, हाँ इसका उदय चल रहा है, हाँ अंतराय सबको दिखता है, और वो भी वेदनीय दिखता है, अंतराय दिखता है, वो ज्यादा स्थूल होता होगा ना। उमा बहन, अंतराय कर्म को कलर होगा कि नहीं, कोई कौन सा लाल पीला काला कुछ तो होना ना, हाँ कर्म को कलर नहीं है। आप क्या कहते हैं नेहा बहन, दक्षा बहन? देखो कर्म पुद्गल है, और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होते ही है, तो भले हमको इंद्रियों से नहीं दिखाई देंगे, हमको वो कलर दिखेगा नहीं, पर कलर है कि नहीं उसको, पुद्गल है इसलिए है ही, बिल्कुल ऐसा ही नक्की करना है। जैसे अग्नि दिखाई दे रही, उसको वर्ण तो दिख रहा है, तो उसमें गंध और रस होगा कि नहीं होगा, होना ही चाहिए। पुद्गल है, एक हमको दृश्य दिख रहा है इंद्रिय के द्वारा, सभी हमको ख्याल में आवे ही, ऐसी बात नहीं, केवली के ज्ञान में तो सब कुछ आ रहा है। यहाँ क्या कहते हैं देखो, दर्शन मोनो क्षोभम थयो माटे संकित पर्याय थाय छे एम नथी, अने केवल ज्ञाननी पर्याय थाय छे ए चार घाती कर्मनो नाश थयो माटे थई छे एम नथी। कथन तो ऐसा ही आता है, जिस जीव ने चार घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्रकट किया, ऐसा तो हम बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना, वो तो व्यवहार का कथन है, निमित्त का ज्ञान कराने का कराने वाला कथन है, उपचार कथन है। सत्य में जीव ही अपने में लीन हो गया है, अपने केवल ज्ञान स्वरूप स्वभाव में स्थिर हो गया, ऐसा स्थिर हो गया तो अभी बिल्कुल राग वगैरह नष्ट हो गए उसके, पूर्ण वितरागी हो गया और सर्वज्ञ हो गया, वो अपने द्रव्य ही उस रूप परिणमित हुआ है। तब सामने कर्मों की क्या अवस्था होती है वो तो हम कह देंगे, कर्म के कारण होता है ऐसा मानेंगे तो हमको राह देखनी पड़ेगी, अभी कर्म थोड़ी अपने पर, हाँ दया करेंगे कोई, हाँ और थोड़ी दूर हट जाए तो हमको कार्य करना आसान हो जाएगा। केवल ज्ञान नहीं पर्याय ते द्रव्य गुण ने आश्रय थाय छे, भाषा तो सादी छे प्रभु। श्रोता कहते विषय कठन छे। हाँ विषय कठन छे, एक्चुअली कठिन इसलिए कि उसकी ने परम ही सब कुछ मान लिया है ना, अनादि, पूरी उल्टी पट्टी चल रही, इसलिए उसको ये कठिन लगता है। तो सबसे सरल, परंतु उसने अनादि से पूरा उल्टा ही निमित्ताधीन ही दृष्टि पड़ी है, इसलिए ये सब उसको एक तो सही लग, यानी उसको विश्वास नहीं है। ऐसी बात सुनता है तो ऐसे, ऐसा कभी होता है क्या, विश्वास नहीं है और फिर कठिन लगता है। आप कुछ
पहले से कुछ मान के रखा है,
हाँ,
अभी उसको छोड़ना तो जरा अपमानास्पद लगता है।
अपमान नहीं तो उसी
नहीं,
को
इसीलिए तो डाइजेस्ट नहीं होता है,
वो सही लगता था
वही तो। हाँ। तो हमने जो आज तक मान के रखा है उसको छोड़ देवे ऐसा लगता है,
क्योंकि जब कहते हैं परद्रव्य में सुख नहीं,
डिफिकल्ट है, कठिन
कठिन लगता है। लोग कहते ना, अरे आपको पैसे में सुख नहीं कहते, लड्डू में सुख नहीं, हम तो अनुभव हो रहा है, कहते हमको लग रहा है उसमें सुख, ये सुख लग रहा है, वो इच्छा हो रही है, और इच्छा अभी लड्डू हाथ, लड्डू जब तक नहीं मिलता था तब तक इच्छा हो रही थी, अब मिल गया ना वो इच्छा नहीं रही, इसलिए उसको थोड़ा दुख कम हुआ, उसको लगता है कि लड्डू से मुझे सुख हुआ। बाय द टाइम दूसरी और इच्छाएं उत्पन्न होती है, लड्डू खाते खाते खाली मीठा नहीं, थोड़ा फरसान भी चाहिए क्यों।
देखो पैसे से सुख होता है ना।
हाँ।
तो यहाँ परसों बनी हुई बात मैं बताता हूँ आपको। बहुत पैसा था तो उसने अपने बीवी को आधे आधे तोले का एक एक क्या बोलते हैं
कंगन,
हाँ। कंगन बना के दिए, एक हाथ में चार दूसरे हाथ में चार, और वो उसकी बीवी थी 65 ईयर ओल्ड, और लेके एक गली में से,
ये गली में से बाहर आ,
इतने में कुछ लोग आए, उस भाई से कुछ बात करी कि हम पुलिस है, ये है वो है, जो भी किया हो उससे कोई मतलब, उससे
उसने खुद उतार के दे दी, उसको
निकाल के दे दिया उसके हाथ में।
हाँ।
तो अभी उसको पैसा अच्छा लगता होगा कि नहीं, ऐसा हम पूछ रहे हैं।
कहती
क्योंकि पुलिस के पास जावे तो पुलिस भी मांगे।
ये आए थे हमारे पुलिस घर में, हाँ ये आए थे, तुम्हारा ये सब दिखाओ करके, तुम्हारा क्या सीसीटीवी में आपके बिल्डिंग वाले में, उसमें क्योंकि गली दिखती है वहाँ पर, दो टीम में टाइम ऐसा हुआ किसी किसी का कुछ गया तो पुलिस आते सब देखने के लिए, है ना। हाँ संभाल के रखना। हाँ आपको वो लेट आते हो तो उसमें आता है सर।
पनिशमेंट
नहीं लेट आने के लिए, नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला यहाँ सीसीटीवी आप लेट आते तो दिखाई देता है। देखो हाँ विषय कठन छे, प्रभु मेरे तुम सब वाते पूरा, भजन आवियो तू ने, प्रभु मेरे तुम सब वाते पूरा, एक मुमुक्षु कहता था त्या प्रीतम शब्द वापर्यो छे, पर की आस कहा करे प्रीतम तू कई बातें अधूरा, यानी तू कौन सी बात में अधूरा है कि तू पर की आस कर रहा है, आशा ने आशा। प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, आनाथ वितराग आत्मा सब बातें पूरो, हम कहते हैं परिपूर्ण है, सब बातें पूरा है ने परिपूर्ण है, प्रभु पर की आश कहाँ करे प्रीतम, हे वाला आत्मा, वाला समझते हो, प्रिय वाला, हे प्रभु आहा स्वनी वालब छोड़ी ने तू परनी आशा क्या करे छे, क्या तू अधूरो छो, कोई वाते तू अधूरो छो, प्रभु बधा गुणे तू पूरो छो, यानी तू अधूरा नहीं है परिपूर्ण है, किसी भी गुण से तू अधूरा है नहीं है, बधा गुणे तू पूरो छो, अरे आम केम बेसू, जितने गुण सिद्धों में है उतने ही मेरे में है, उनके परिपूर्ण स्वभाव पर्याय रूप परिणमित हुए हैं, अब यहाँ तो गुण तो उतने ही के उतने हैं, परंतु उसका भरोसा नहीं किया, उसका विश्वास नहीं किया, उसका कभी लक्ष्य नहीं किया, इसलिए उस जैसी पर्याय भी प्रकट नहीं हुई। और पर से ही कुछ मिलेगा, इसलिए पर की ओर सन्मुख होकर बैठा है, इसलिए विकार रूप परिणमित हो रहा है। जाने देव थी मड़ी जैसे, गुरु थी मड़ी जैसे, मंदिर माथी मड़ी जैसे, भगवान ने प्रतिमा ना दर्शन करवाती मड़ी जैसे। देखो इसका निषेध नहीं, पर उसमें ये जो मान्यता है ना, अरे वहाँ वहाँ के भगवान कुछ तो हमें फायदा कराएंगे, है ना, हमारे यहाँ के नहीं चलेंगे, गांव के महावीर नहीं चलते, वो महावीर जी वाले महावीर है ना, हाँ क्या है वहाँ का अतिशय,
सवाई माधोपुर के
मैं नहीं बोलूँ, पुत्र होता है, पुत्र होता है समाज,
इसलिए इनको तीन लड़कियाँ हैं, पहले पता होता तो उधर जाते,
कोटा के पास था वो जो नजदीक था वहाँ पर। और भगवान को भी
ऐसा कह रहे हैं कि महावीर जी जो सवाई माधोपुर के जो महावीर है उनके पास जाके मन्नत मांगो तो तुमको लड़का होता है,
और वो भी मन्नत कैसे, लड़का होगा तो फिर वो छत्र चढ़ाऊंगा, इन एडवांस एडवांस नहीं कोई देता, भगवान को कोई एडवांस में नहीं देता। वहाँ जाना है तो ट्रेन का रिजर्वेशन 4 महीने पहले करेगा, और वो फुल पेमेंट करके, ऐसा नहीं कि हमको सेफली पहुँचा देंगे तो हम पेमेंट करेंगे, ऐसा ट्रेन में नहीं चलेगा।
नहीं नहीं, ये दुनिया की सभी जोकों की ये मान्यता है। मैं मेरी बात बताता हूँ, मैं 1951 में शायद शिखर जी गया, तो शिखर जी गया तो मेरे को जबरदस्ती वो आदमी होता है ना, वो पीठ पर बिठा
डोली
के
वाला, हाँ, गोदी, गोदी
गोदी
गोदी कहते हैं,
गोदी या डोली,
गोदी
डोली नहीं,
आदमी उठाते उसको गोदी कहते हैं,
जो भी हो। तो
पीठ पे ले
जाते, मेरे को चल के जाना था, और हमारे घर के सब लोगों ने बोला नहीं तेरे को इसके साथ आना है। तो वहां से आते आते हम गिरनार आए, तो गिरनार आए तो वहां बहुत भीड़ थी, तो गिरनार आए तो वहां वो मिला ही नहीं डोली डोली को, जो बोलते कुली जो भी होगा। मेरे को 10,000 पगतियां में चढ़ के उतर के नीचे आया, तो किसकी मेहरबानी, नेमिनाथ भगवान की मेहरबानी, इसलिए मुझे चलने को मिला। तब से मेरे को उनके प्रति विशेष लोभ था, लेकिन अभी पता लगा कि क्या असल में बात है, ख्याल में है ना। देखो ऐसा लोग मानते हैं, क्या तुम्हारा भगवान कुछ नहीं करता है, कुछ देता भी था नहीं, तो काय को उसका नमस्कार करने का, और आप तो उनको दिन में 10 बार तो नमस्कार करते हो, अरे कुछ देता ही नहीं तो उसको नमस्कार काय को करने का। यानी ये जो मान्यता कोई ना कोई जगहों की कहीं ना कहीं पड़ी है, इसलिए आपने बताया महावीर जी के महावीर ही हमको बच्चा देते हैं, अरे जो स्वयं ब्रह्मचारी, हाँ वो तुमको बच्चा दे, अरे वाह, हाँ कैसी विडंबना है देखो। लेकिन ये मूर्ख जीव जो है उसने ही हमारे 24 तीर्थंकरों में क्या बोलते हैं, मैं बता दूं एक मिनट, पोर्टफोलियो खोल दिया है, शांति शांतिनाथ शांति प्रदान करते हैं, शीतलनाथ शीतलता प्रदान करते हैं, हमने तो सिद्धों को भी नहीं बख्शा,
पारसनाथ संकट विमोचन,
सिद्ध क्या करते हैं तो बोलते वो कोड़ उतार देते हैं। देखो हम इतने सियाने हैं।
अच्छा वो आज सुनती हूँ मैं, वो आज सुना हमने, वो कहते श्वेतांबर में शनिवार को मुनीश्वरत भगवान की पूजा करना, पता नहीं, अच्छा शनि जाता है भाग।
यानी मैं यही कह रहा हूँ कि हमने हर एक भगवान को कुछ न कुछ काम सौंप दिया, चल तू क्या है शांति कर, तू क्या है शीतलता कर, तू क्या है फला कर, और कुछ नहीं तो कुछ नहीं संकट विमोचक पारसनाथ को बना दिया।
मेटो मेटो
ये हमारे अपने भगवान के प्रति जो निष्ठा है उसका द्योतक है, हम कितने उल्लू हैं ये वहां बताता है, हमारी मान्यता ऐसी है। हाँ जी
वो ये चलता है मन्नत बिन्नत उसमें भी चलती है, पर ये मुनीश्वरत की शनिवार की बात मैंने आज सुनी। हाँ
अरे भाई साहब
वो अभी अभी बने हैं,
मिथ्यात्व चारों गति में है, क्या दिगंबरों में मनुष्य नहीं है क्या?
हम गए थे तभी वो मंदिर बनना चालू था। देखो मिथ्यात्व को कहाँ कहाँ से कैसे निकलता है, है ना? चलो यही कह रहे, एक तो देवती मणि जैसे उसमें भी और ज्यादा कुछ ना कुछ मिथ्या मान्यता है। गुरु थी मणि जैसे, मंदिर माती मणि जैसे, भगवान की प्रतिमा ना दर्शन करवाती मणि जैसे, यात्रा करूँ एमाती मणि जैसे, दयादान थी मणि जैसे, बधी मान्यता मिथ्या भ्रम छे। कहीं से बाहर से कुछ नहीं होने वाला है। दयादान ना परिणाम तो विकार छे, अने सम्यक ना परिणाम ते द्रव्य गुण थी रचाय छे। ए विकार थी रचाय छे, मैया नथी है वो, यानी वो विकार से सम्यक तो की परे ऐसा नहीं है, द्रव्य से वो हो रही, बस इतना यहाँ पर लेना छे के नहीं भाई? आ सामे पांच छे के नहीं पूछ रहे, वो सामे वो पुस्तक में लिखा है कि नहीं शास्त्र में, ये पूछ रहे। कभी कोई बात अपने से नहीं, वो जो बिल्कुल हर एक चीज के लिए आधार देकर बताते, और हर एक के सामने शास्त्र होना चाहिए, ये पद्धति वहाँ स्वाध्याय की। खाली सुनना नहीं है, हर एक के हाथ में शास्त्र होना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए कौन से शब्द आ रहे हैं, उसका अर्थ क्या हो रहा है। आ तो भगवान की वाणी छे, गजब बात करी छे, शब्दों थोड़ा पन रहस्यों पार न मरे, और वो रहस्य तो ज्ञानी निकाल कर बता सकते हैं। इसलिए तो गुरुदेव के इतने हम उपकार क्यों मानते हैं? तो समय सार तो थे ना, 2000 वर्षों से समय सार है हमारे दिगंबरों में, और उसका इतना उन्होंने खोल खोल कर अर्थ आसान करके बताया है। 19-19 बार तो आद्योपांत प्रवचन हुए उनके, और अकेले समय सार पर नहीं, सभी ग्रंथों को लिया उन्होंने। वो कल बात आई थी ना आपके प्रवचन में के जब वो श्वेतांबर में थे तभी से दिगंबर शास्त्र उनके पास था, और उन्हीं के पास जाते थे जहाँ दिगंबर शास्त्र उनके लिए वो रखते थे। वो लोग कहते हमारे गांव में तभी आएंगे जब हम दिगंबर शास्त्र उनके लिए रखेंगे, हमारे यहाँ ज़्यादा दिन रखेंगे। यानी उन्होंने परिवर्तन किया, उसके पहले 7-8 साल से वो ज़्यादा ही वो दिगंबर का ही अब 13 साल हाँ कल वो उसके साल उन्होंने बताए थे उसके अंदर, तो उन्होंने ये भी बात बताई कि भाई को मैंने बताया कि मुझे ये दीक्षा का त्याग करना है, तो कहते हड़वे हड़वे करो अभी, हाँ यानी उसमें भी उनके 4-5 साल चले गए, उन्होंने ना बोला कि अभी ऐसा मत कर करके।
मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि अपने अरविंद भाई हमेशा बोलते दिगंबरों में भी ऐसा होता है, दिगंबरों में भी ऐसा होता है, यानी ये क्या है? मैं खुद दिगंबर हूँ बोल रहा हूँ ना, मैं खुद दिगंबर हूँ, मैं मेरी मिस्टेक बता रहा हूँ ना आपको, लेकिन आपका ये दिगंबरों का कान पकड़ने का क्या मतलब है? बोलने से, मन से नहीं।
देखो जो नहीं मानता वो दिगंबर में जन्मा श्वेतंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता,
एक बार में हमेशा
नहीं, वो हमेशा कहते दिगंबरों की बात है। उनको आश्चर्य लगता कि उसमें भी ऐसा होता है क्या, क्योंकि वो खुद श्वेतांबर से आए, उनके इसलिए लगता कि दिगंबर सब सच्चे मानते होंगे, पर ऐसा है नहीं ना, वो भी अभ्यास करना रे कहाँ है, और उल्टी पट्टी पढ़ाने वाले तो सर्वत्र मिलते हैं, ये बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पर भी जिन्होंने मुनि दीक्षा लेके बैठे हैं और विपरीतता चल रही है, वो विपरीतता का ही उपदेश दे रहे हैं। वो बात अलग है, वो दो पद्धतियाँ अलग अलग है। हाँ। तत्वज्ञान की बातें करने, वो रूढ़ियों के ऊपर जाना ही नहीं, हाँ उसके उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ। देखो क्या कहते हैं, खावानी पर्याय पण ताराथी थाय एम छे नहीं, खाता खाता जीव हले, ए हले छे ई पर्याय छे, ए कोनाथी थई छे, के जीवना परमाणु अने गुण छे એના દ્રવ્ય ગુણ થી ઉત્પન્ન થયેલી એ જીભની પર્યાય હલે છે, હલે છે. એને જીભ, જીભ જો હિલતી હૈ ખાતે સમય, જીભ કી જો મૂવમેન્ટ હો રહી હૈ, વો પરમાણુ કા કાર્ય હૈ, પરમાણુ સે બની. તેરે સે ને તું તો જીવ દ્રવ્ય હૈ, તો કહેતે જબ તક તો મરને કે બાદ ક્યો નહીં હિલતી, તો ઉસકી યોગ્યતા નહીં થી, જબ યોગ્યતા થી તબ હિલતી હૈ. ઇસલિયે ક્યા માના, વો જીવ હી કરતા હૈ કે નહીં. હમ દુબઈ મેં ગયે થી ને, ઉસને એક આદમી ને પૂછા થા, જૈસે વો બેટરી પર ખિલોને આતે હૈ ના, તો બેટરી ડાલો તો ખિલોને એસે એસે કરતે હૈ, હા, તો કહેશે યે જીવ હૈ તબ તક વો શરીર ચલતા હૈ, તો કહેતે એસા નહીં કે.
દુબઈ
કી બાત કહી મેને અભી. આત્મા જીભને હલાવે છે એમ જે માને છે, એને એક તત્વને બીજા તત્વ સાથે ભેળસેળ કર્યું, ખીચડી કરી ઉસને, સહી નહીં માના, મિથ્યાત્વ કર્યું. આવું સ્વરૂપ છે, પરની દયા પાડી શકું છું, પરની અવસ્થા હું કરી શકું છું, એને જીવતા રાખી શકું છું એમ અજ્ઞાની માને, પણ એ પર્યાય થઈ છે તેના દ્રવ્યગુણ પર્યાયને કારણે. જીવ જો કિસી ભાવ મેં રહા હૈ, જી રહા હૈ, વો ઉસકે અપને સ્વયં કી યોગ્યતા કે કારણે. નિમિત્ત હી કહેના હૈ તો આયુષ્ય કર્મ કો લેંગે, પરંતુ કિસી પર કે કારણ તો વો તો ના જીતા હૈ ના મરતા હૈ. જીવ કી અવસ્થા હૈ મનુષ્ય પર્યાય, વો જીવ કી અવસ્થા, શરીર કી છોડ દો, વો આત્મા કી ભી મનુષ્ય પર્યાય તરીકે જો અવસ્થા ચલ રહી હૈ, ઉસકી અપની યોગ્યતા સે ચલ રહી હૈ, વહી સ્વયં વો મનુષ્ય પર્યાય છોડકર દેવ પર્યાય રૂપ સે હો જાયે. હા, વો સાતમે કર્મ હો ગયે, આયુ કર્મ કા ક્ષય હોગા, વો સબ બાત હૈ, વો ફિર નિમિત્ત રૂપ સે હોય. પરંતુ જીવ ક્યા માનતા હૈ, નહીં મેને ઇસકો બચાયા, મેને ઇસકો મારા, યે ઉસકી મિથ્યા માન્યતા હૈ. સમયસાર મેં આતા હૈ એસી બાતે, વો બહુત વિસ્તાર સે બતાઈ ઉન્હોને. એ ટકતું જીવ દ્રવ્ય છે, તો કોણ કોણ સે ટકતે દ્રવ્ય હૈ સુમેરચંદજી? ટકતું ને ટિકના રે, કાયમ રહેને વાલા, એને ઠેકાને આ કહે છે કે હું એની દયા પાડી શકું છું, એની પર્યાય કરી શકું છું, તો એને પોતાની પર્યાયમાં એ પર્યાય કરી શકું છું એવી માન્યતા થઈ. પણ એની પર્યાય એના દ્રવ્યગુણ પર્યાયથી થઈ છે, સમજમાં આવતી ને? કોઈ માન લેતે બીમાર હૈ, યા કોઈ એક્સિડેન્ટ મેં, તો હમને ઉસકો ઉઠાયા, હોસ્પિટલ લે ગયે, દવા કી, વો બચ ગયા, તો એ જીવ ક્યાં માનતા હૈ? મેને ઉસકો બચાયા. તો શરીર કી અવસ્થા તો શરીર કે પરમાણુ કે કારણ હોય, ઓર જીવ કા વહાં રહેના જો હૈ ઉસ શરીર કે સાથ સંયોગ રૂપ, વો જીવ કી અપની અવસ્થા હૈ. વો નિમિત્ત રૂપ સે આયુ કર્મ ભી લે લેંગે, પણ શરીર કી અવસ્થા જુદી, કર્મ કી અવસ્થા જુદી, ઓર ઉસકી જીવ કી અવસ્થા જુદી. એનું જીવવું ટકું રહ્યું એના દ્રવ્ય ગુણથી રહ્યું છે, આયુષ્યથી પણ નહીં, હે ને? આયુષ્ય કર્મ પર આરોપ આતા હૈ કે જબ તક આયુષ્ય હૈ તું દૂસરે કો આયુ કર્મ દે નહીં સકતા, તું તેને ઉસને ક્યાં બચાયા, ઓર કિસી કા આયુ કર્મ હર નહીં સકતા, તું ઉસને મારા કેસે. પરંતુ વો ભી નિમિત્ત હૈ, આયુ કર્મ ભી નિમિત્ત હૈ, ક્યોંકિ કર્મ એ પુદ્ગલ હૈ, ઓર જીવ વહાં જો મનુષ્ય પર્યાય મેં રહા હૈ, વો અપની સ્વયં કી યોગ્યતા સે રહા, ઇતની સ્વતંત્રતા હૈ. એ શરીરમાં જે પોતાની પર્યાયની યોગ્યતાથી હે ને, એને મનુષ્યપણે આત્મા કા જો મનુષ્ય પર્યાય વાલી જો બાત ચલ રહી, વો સ્વયં કી યોગ્યતા હૈ, તો પોતાની પર્યાયની યોગ્યતાથી રહ્યો છે. એ પર્યાયની ઉત્પત્તિનું કારણ દ્રવ્ય ગુણ છે, આયુષ્યને કારણે નહીં, કર્મને કારણે નહીં. શ્રોતા કહેતે ગાંડ પણ ઉતરી જાય એવું છે, અને મૂર્ખપણા, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી, ઉતરી જાય એવું છે બાપા, અહીં તો આહા હા, અરે પ્રભુ તું કોણ છો ભાઈ, તારે તને ખબર નથી, અરે પરમાણુ પણ કેવડો અને કેમ છે, એની પર્યાયનો કરતા કોણ છે પ્રભુ તને ખબર નથી, આહા હા, બીજો પરમાણુ એની પર્યાયને કરે એમ પણ નથી. એક પૂરા સ્કંદ હૈ ઉસમે એક પરમાણુ દૂસરે પરમાણુ કા કુછ નહીં કર સકતા, અત્યારે એ લોકો કહે છે ને ભાઈ, પાંચ ગુણ, બે ગુણ અધિક એમાં આ નાખે છે. પાંચ ગુણવાળો પરમાણુ હોય અને બીજો ત્રણ ગુણવાળો પરમાણુ હોય તો એને પાંચ ગુણવાળો કરી દે, પ્રભુ એની અહીં ના પાડે છે. દેખો, એ તીન વાળા પાંચ રૂપ હોતા હૈ, પણ વો સ્વયં કી યોગ્યતા સે હોતા હૈ. પાંચ વાલે ને તીન કો પરિણમાયા એસા બિલકુલ નહીં હૈ. એ પાંચ ગુણની પર્યાયપણે પરિણમ્યો છે તે તેના દ્રવ્ય ગુણથી થઈ છે. સામે પાંચ ગુણવાળો છે માટે ત્યાં પાંચ ગુણવાળી પર્યાય થઈ છે એમ નથી. હૈ તો એસા હિ સામને દિખતા હૈ, વો પાંચ વાળા થા, એ તીન વાળા થા, એ તીન વાળા પાંચ રૂપ હો ગયા, પણ ઉસકે કારણે, અપને કારણે, એ ઉસકી સ્વયં કી યોગ્યતા હૈ. હા હા હા, અરે આવું ક્યાં સાંભળવા મળે. અનાદિથી આંધળે આંધળું હાલે છે. પાંડ બોલો નમો રેન તાણમ, એ અવાજ નીકળે છે નમો રેન તાણમ, એ ભાષાની પર્યાય છે. ભાષા વર્ગના ઉસરૂપ શબ્દરૂપ પરિણમિત હોઈ હૈ, વો પુદ્ગલ હૈ, એના પરમાણુ અને પરમાણુના ગુણથી ઉત્પન્ન થયેલી ભાષા પર્યાય છે. આત્મા નમો અરિયંતાણમની ભાષા કરી શકે નહીં, તો બોલ નહીં સકતા, તો બોલને સે ઉસકો પુણ્ય હોગા કે નહીં? હા દક્ષાબેન બોલો. પુણ્ય તો બંધ હૈ, ક્યો બંધ રહે? અપને ભાવ સે બંધેગા, શુભ રાગ સે બંધેગા. નમો અરિયંતાણમ ઉચ્ચાર ક્યાં ના, હા એ જૈસે શરીર કી ક્રિયા હુઈ, આવાજ નિકલી, તો એ શબ્દો કે કારણ ના બંધ હોગા, ઓર ના હી આવાજ નિકલી ઉસકે કારણ બંધ હોગા, ઓર ના હી શરીર કે હલચલ કે કારણ બંધ હો રહા. બંધ ક્યું? ઉસકા શુભ રાગ હૈ, અરિયંતો કે પ્રતિ ભક્તિ ભાવ હૈ, વો રાગ હૈ, ઉસસે બંધ હોગા.
દેખો, હમ પુના મેં ગયે થે, તો પુના કે એક જગહ હમકો બુલાયા થા, જરા જલ્દી બુલાયા થા નાસ્તા કરને કે લિયે, તો હમ થોડા સા જલ્દી ગયે, ક્યુંકે રસ્તા કિતના દૂર હૈ માલૂમ નહીં થા. તો હમ ગયે તો ઉનકે ઘર મેં ઘર દે રહા સન જૈસે અપને ઘર મેં હૈ, તો વો જિસ ઘર મેં હમ ગયે થે ઉધર દો કુત્તે રખ ઉન્હોને પાલે હુએ થે, તો જૈસે વો ભગવાન કી પૂજન કરને કે લિયે વો ઘંટી બજાતે ટંગ 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 ટંગ, એક કુત્તા દોડતે આતા થા ઉધર આકે બેઠતા થા. વો કહેતે યે રોજ એસા કરતા હૈ, દૂસરા આતા નહીં. અભી ઉસકો નમોરિયંતાણમ ક્યાં હૈ માલૂમ નહીં હૈ, લેકિન યે પૂજા હોતી હૈ, ઓર નિશ્ચિત રૂપ સે ક્યાં કહેતે વો મૂર્તિ દેખતે ઉસકે એસે ભાવ હોતે હોંગે કે આપણ હાજર રહે. શ્રવણ બેલગોલા મેં ભી હમ ગયે થે, તો વહાં ભગવાન કે મૂર્તિ કી યે કર રહી થી, ક્યા બોલતે હૈ, અભિષેક હોતા હૈ ના વો મહામસ્તક, વહાં બંદર આકે બેઠ,
બંદર દેખે થે, હા વો એકદમ એસે એકટક દેખ રહે થે,
ઓર બિલકુલ એસા સામને દેખેંગે, જરા ઇધર ઉધર ભી હિલેંગે નહીં. યે તો સહજ ભાવ હોતે એસે સબકો હોંગે.
વો સંગી પંચેન્દ્રિય હૈ ના, હા વો ભી સામને દેખતે તો વિશાલ ઇતની મૂર્તિ તો, ઓર એસે ભી હૈ, વૈસે ભી તિર્યંચો મેં ભી તો હોતે હૈ સમય દ્રષ્ટિ. દેખો યહાં ક્યા કહેતે હૈ, પ્રશ્ન ક્યા પૂછા, દેખો ભાષા સમિતિ કેવી રીતે પાડે, બોલ નહીં સકતા જીવ, યે પુદ્ગલ તો ભાષા સમિતિ કા પાલન કરતે મુનિરાજ, યે કૈસે હો સકતા હૈ? સમાધાન, ભાષા સમિતિ તો અંદરમાં રાગ મંદ કરવો અથવા ન કરવો એ ભાષા સમિતિ છે. ભાષા સમિતિ કિસકો કહેંગે? હા હિતમિત પ્રિય જો કુછ હૈ, તો કહેતે સ્વરૂપમાં પર્યાયને સાવધાન રાખવી અને એ પર્યાયને દ્રવ્યગુણથી ઉત્પન્ન કરી રાખવી એનું નામ ભાષા સમિતિ છે. વાતું બીજી છે બાપુ, શું કહીએ. અને જીસકો ઇતની સ્વરૂપમાં સાવધાની હૈ ઉસકી ભાષા કિસ પ્રકાર હોતી હૈ, તો ઉસકો કહીએ ભાષા સમિતિ પાલી. શું કહીએ, ક્યાં કહેવું. અત્યારે સંપ્રદાયમાં તો બધે ગોટે ગોટા ઉઠ્યા છે, ક્યાંય સત્ય વાત સાંભળવા મળવી મુશ્કેલ છે. બાપુ શું કહીએ, પર્યાય કોને કહેવી, દ્રવ્ય કોને કહેવું, એ અહીંયા કીધું. ગુણ કોને કહેવા એ કીધું, હવે પર્યાય કોને કહેવી. પરમાણુમાં અને આત્મામાં એ પર્યાય અવસ્થા જે થાય છે તે પર્યાયની ઉત્પત્તિનું કારણ તેનું દ્રવ્ય અને ગુણ છે. એ પરદ્રવ્ય સે વો ઉત્પન્ન નહીં હો રહી બસ યહાં પહેલે મેં પહેલે ક્યુંકિ બેસિક સે શરૂ કર રહે હમ આગે બઢેંગે ફિર એ દ્રવ્ય ને ગુણથી તે પર્યાય રચાય છે. એ પર્યાયને તેના દ્રવ્યગુણ પહોંચી વળે છે, પ્રાપ્ત કરે છે. બીજા દ્રવ્યથી તે પર્યાય થાય છે એ મિથ્યા ભ્રમ અજ્ઞાનીની મિથ્યા માન્યતા છે. બીજા દ્રવ્યથી નિમિત્ત સે હુઆ, ઇસકે કારણ હુઆ, ઉસકે કારણ હુઆ, યે ક્યા હૈ? ભ્રમ હૈ, માન્યતા ઉલટી હૈ. એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ મૂળ જીવ છે. ભલે ત્યાગી થયો હોય, સાધુ થયો હોય અને પંચમહાવ્રતના પરિણામ કદાચિત અજ્ઞાનપણે કરતો હોય તો પણ એ મિથ્યા દૃષ્ટિ છે. ઓર મિથ્યા દૃષ્ટિ કો મૂળ કહા. અબ કિસી કો એસા સુનકર ઉનકે શિષ્યો કો ગુસ્સા આવે ને. અને એ રાગના પરિણામ છે, માટે મને ચારિત્ર છે માનનાર મિથ્યા દૃષ્ટિ છે. જે મહાવ્રત કે પરિણામ હૈ વો તો રાગ ભાવ હૈ, વો ચારિત્ર નહીં. ચારિત્ર તો અંતરંગ મેં જીતને વિતરાગતા હૈ વો ચારિત્ર હૈ.
ચારિત્ર તો જીવગુણ કી પર્યાય હૈ, જીવ દ્રવ્ય મેં રહેગી,
જીવ દ્રવ્ય કી પર્યાય,
બહાર કે
જીવ દ્રવ્ય કી પર્યાય.
બહાર કા જો પરિણમન હો રહા હૈ શરીર કા યા રાગ હો રહા હૈ,
ચારિત્ર નહીં,
વો ચારિત્ર નહીં હૈ.
યહાં લિખા ને ચારિત્ર ની પર્યાય છે તે દ્રવ્ય ગુણ થી ઉત્પન્ન થાય છે. કોણ સે દ્રવ્ય સે? આત્મા કી બાત હૈ ને, વો જીવ દ્રવ્ય સે ઉત્પન્ન હોગી, વો શરીર કે કારણ નહીં ઉત્પન્ન હો રહા. ચારિત્ર ની પર્યાય છે એ મહાવ્રત ના રાગ ના પરિણામ છે, એનાથી ઉત્પન્ન થતી નથી. એટલે વો ચારિત્ર નહીં, વો રાગ હૈ. એ ચારિત્ર ગુણ કા વિભાવ હૈ, વો ધર્મ નહીં. કેટલું સમાડ્યું છે, આવું છે પ્રભુ. કિતના ઇસમે સમા દિયા હૈ, એને એક હી ઇતની ગાથા મેં ક્યા ક્યા બાતે બતા દી હું. આ ત્રાણુમી ગાથા હજી ગેય અધિકારની પહેલી ગાથા ચાલે છે, અભી તો શરૂઆત હૈ યહાં સે. કહે છે કે દ્રવ્યાત્મક પણ છે, કોણ કે પર્યાય બતાય ને, દ્રવ્ય સે ઓર ગુણો સે રચાયેલી. પર્યાય એટલે અવસ્થા, અવસ્થા કહો, દશા કહો, હાલત કહો, હા ઉસકે પરિણતિ પર્યાય હૈ. પર્યાય એટલે અવસ્થા, તેને દ્રવ્ય સ્વરૂપ પણ કહેવામાં આવે છે અને ગુણ સ્વરૂપ પણ કહેવાય. દ્રવ્યાત્મક પણ છે અને ગુણાત્મક પણ છે. હવે અહીંયા સંયોગથી વધારે વાત કરી છે, તેમાં અનેક દ્રવ્યાત્મક એકતાની પ્રતિપત્તિના કારણભૂત દ્રવ્ય પર્યાય છે. નીચે અર્થ કર્યો છે, નીચેની મૂળ પુસ્તકમાં ફૂટનોટમાં લિખાતા. જ્ઞાન સ્વીકાર પ્રતિપત્તિ અને ક્યાં ઉસકા જ્ઞાન હોના સ્વીકાર હોના. અનેક દ્રવ્ય સ્વરૂપ અર્થાત આત્મા અને પરમાણુ, અથવા ક્યાં હૈ પરમાણુ અને પરમાણુ. કોણ સે દો અલગ અલગ દ્રવ્યો મિલકર એક એક જૈસે લગતે, આત્મા ઓર પરમાણુ. પરમાણુ ને એક પરમાણુ નહીં લેના, વો સારે અનંત પરમાણુ લેના, યા પરમાણુ ઓર પરમાણુ. એને કેવલ સ્કંદ હૈ, ઉસમે જીવ કા કોઈ સંબંધ નહીં હૈ, જીસકો હમ સમાન જાતિ કહેંગે. ઓર આત્મા ઓર પરમાણુ કા મિલકર અસમાન જાતિ હોગા. એ અનેક દ્રવ્ય સ્વરૂપ છે, અનેક દ્રવ્યાત્મક એકતાની પ્રતિપત્તિ. પ્રતિપત્તિ એટલે જ્ઞાન, એને દ્રવ્ય પર્યાય કહેવાય. એને હૈ તો અનેક દ્રવ્ય, ઓર ઉસમે હમે એકપણા કા જ્ઞાન હો રહા હૈ, હમે લગ રહે વો એક વસ્તુ હૈ. એ કહેશે તે દ્વિવિધ છે, દ્વિવિધ એને દો પ્રકાર કે, સમાન જાતીય દ્રવ્ય પર્યાય અને અસમાન જાતીય દ્રવ્ય પર્યાય. હા હા હા, કેટલું યાદ રાખે. એક એક વાતમાં ફેર. માણસ નથી કહેતા આનંદ કહે પરમાનંદા, માણસે માણસે ફેર, એક લાખે તો ન મળે એક તાંબિયાના તેર. નહીં સમજે? અને માણસા માણસા મધ્ય ફરક હૈ, સમજમાં આતા હૈ? માણસે માણસે ફેર, એક લાખે તો મને લાખ મેં એક નહીં મિલેગા, એને લાખ રૂપિયા દો તો ભી એક નહીં મિલતે. ઓર એક તાંબિયાના તેર, તાંબિયા સમજશે पहले के जमाने में तांबे का पैसा आता था,
डब्बू
पैसा को महंगा था।
अच्छा।
अरे वो होल वाला पैसा आता था ना, नया नहीं जूना, वो भी तीन पाई का एक पैसा आता था ना, वो वाला पैसा। एक तांबियाना तेर, तो एक पैसे में 13 मिल जाते थे। एक वैल्यू 1 लाख में एक नहीं मिले, एक मानस ऐसा कि लाख लाख कीमत है उसकी, है ना।
लाख रुपया देने से भी, लाखों देने से भी माल की वैल्यू नहीं होती। और कई लोग ऐसे होते कि एक पैसे में 13 भी मिले,
एक पैसे में 13 मिल जाते,
13
उसकी वैल्यू।
एक तांबे में,
तांबे की वैल्यू 13 नहीं, आदमी की वैल्यू, यानी एक पैसे का 13वां भाग, यानी ऐसे आदमी पैसे में 13 मिल जाएगी। हाँ। और कोई लाख देने पर भी नहीं मिलेगा ऐसा।
फिर से गुजराती पढ़ो,
देखो। आनंद कहे परमानंदा, मानसे मानसे फिर, ये कोई अलग अर्थ हो तो बताना गुजराती वाले। हाँ
हाँ,
एक लाख है तो न मळे एक तांबियाना तेर, ये लाख में भी एक में नहीं मिलता, इतनी उसकी वैल्यू है। और बाकी कैसे, हाँ, एक पैसे में 13 मिल जावे। हाँ। एम परमात्मा कहे छे प्रभु, तारी श्रद्धा अने वस्तुनी श्रद्धा तेमा अमे कहीए छे के वाते वाते फेर छे प्रभु। जो आ पानू जे ऊंचू थाय छे ए एनी अवस्था छे, एने पुस्तक का पन्ना पलटते है तो ये पुस्तक ये पाने के ने वो पन्ने की अवस्था है, ये एनी अवस्था छे। ये हमने देखा ना, ये तो हमने पेन उठाया, हम कहेंगे मैंने पेन उठाया, परंतु ये पेन यहाँ से यहाँ उसका गमन हुआ, वो उसके पेन की अवस्था है। वो मैंने उठाई बात कहाँ से आई, आपने नहीं उठाई, हाथ ने तो उठाई नहीं, हाथ उठा अपनी योग्यता से, वो परमाणु जुदे है, पेन के परमाणु जुदे है, वो पेन की अवस्था पेन में, ये इसे दिखाई देना चाहिए जुदा हो रहा है करके।
यह अभी आपने बताया कि मैंने पेन को नहीं उठाया, तो ये कौन सा अभाव होगा उमा बेन,
मेरे में और पेन में अत्यंत अभाव।
और शरीर ने उंगली ने उठाया,
अन्य बहुत अच्छा,
ये बात बिल्कुल इन्होंने पकड़ के रखी, इसलिए इनसे पूछा मैंने। ये चार हवा बिल्कुल बाहर हो गए,
चार हवा तो बिल्कुल सही रूप से पकड़ में आने
चाहिए, यानी उसको एप्लीकेशन आनी चाहिए। और बहन ने बराबर ध्यान रखा है, और ये बात समझ में आने से यहाँ जो कह रहे वो उस पर भरोसा आता है, वही तो कह रहे वो, क्या अभी बताया। देखो
देखो नए आने वाले क्या देखेंगे, अरे स्वयं हाँ पलटा है और कह रहे ये तो इसकी अवस्था मेरे से नहीं हो रही है ना।
यहाँ लिखा ना, तारी श्रद्धा अने वस्तुनी श्रद्धा तेमा अमे कहिए छे वाते वाते फेर छे,
यानी तारी मिथ्या श्रद्धा और वस्तु की सच्ची श्रद्धा, हाँ इसमें बहुत फर्क है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, आ पानू नीचे का पैराग्राफ, आ पानू जे ऊंचू थाय छे, ये हो गया समय, ए एनी अवस्था छे, तो कहे छे के ए अवस्था आंगळी थी ऊंची थई नथी, आम ऊंची थवानी अवस्था नु करनार एना द्रव्य ने गुण छे, एने पाने के उपन्ने के परमाणु, पानाना परमाणु ना द्रव्य ने एना गुणों थी ए पर्याय आम उत्पन्न थई छे, आंगळी थी नही आत्मा थी नही। आऊ बधु एक जन कहे, आऊ काढ्यू क्या थी, कहां से निकाला, આવું તો અમે 50-60 વર્ષમાં ક્યાંય સાંભળતા નહોતા, આ અત્યારનું છે, સોનગઢનું છે, આ લોકો એસે માનતે તે સ્વામીજીને કુછ નયા નિકાલા, હા કહેતે આ તો અનાદિથી ભગવાનની વાણી અને અનાદિથી ભગવાનનું કથન આ છે, વો તો લોકોને કભી ઉસકો ગુમી કર દિયા ના, કભી પઢાઈ નહીં ઉસકો સમજાઈ નહીં, ઓર એસી ઉપર ઉપર કી બાતે વ્રત કરો કે ચલતી હૈ સભી સમાજ મેં, વો કોઈ એક પંથ કા નામ લેને કી જરૂરત નહીં હૈ। તેમાં अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति ना कारणभूत द्रव्य पर्याय छे, अने है तो अनेक द्रव्य परंतु एकपना का ज्ञान हो रहा है, ते बे प्रकारे छे, बे प्रकार कया छे ते विशेष कहे छे। वो कल देखेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अरविंद